ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आज हम श्री चैतन्य चरितामृत से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के विषय में चर्चा करेंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी और नो, सो इन संडे यूजुअली वी डू इट इन हिंदी हियर, सो आई डोंट, लेट्स सी व्हाट इट गोस। सो हम लोग, हाँ जी, इंग्लिश ऑल्सो, लेकिन हमने ऐसा मतलब आज्ञा दी गई है हमें कि हिंदी में कथा करें। इस वर्षा के कारण सबको सुन पा रहा है क्या? इट इज, मेरे को तो कठिनाई हो रही है श्रवण करने के लिए। मेरे सुन रहा है सबको? मेरे को खुद को सुनने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। ये श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 13वें अध्याय, जिसका शीर्षक है रथयात्रा पर एक्स्टैटिक डांसिंग। अर्थात एक्स्टैटिक डांसिंग को हिंदी में कैसे कहेंगे? हाँ जी, भाव विभोर नृत्य श्री महाप्रभु का। बड़ा उसके श्लोक क्रमांक 1 पर हम चर्चा करेंगे। सजियात कृष्ण चैतन्या श्री रथाग्रे नर्तयः येनासिद् जगतं चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मितः। सजियात् कृष्णचैतन्या श्रीरथाग्रेण नर्तयः येनासिद् जगतां चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मितः। सजियात कृष्ण चैतन्या श्रीरथाग्रे नर्तयः येनासि जगतां चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मितः। यात कृष्ण चैतन्य विस्मितः। सजियात कृष्ण चैतन्य, अनुवाद ट्रांसलेशन। मे द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण चैतन्य हु डांस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कार ऑफ श्री जगन्नाथ बी ऑल ग्लोरिफाइड। By seeing his dancing, not only was the whole universe held in wonder, but Lord Jagannath himself became very much astonished. Anuvad. वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे इस का जो नृत्य किए, वह उनका जय जयकार हो। उनके नृत्य को देखकर ना केवल संपूर्ण विश्व बल्कि स्वयं जगन्नाथ जी भी विस्मित हो गए। ऐसा अद्भुत श्री चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं दंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं हरे कृष्ण। तो सब भक्तों की आशीर्वाद की याचना ताकि आज हम कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु के इस अद्भुत प्रसंग श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के विषय में कुछ संक्षिप्त में चर्चा कर सकें। शाम को बहुत सुंदर यहाँ रथ यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया है, तो सब लोग उसमें भाग लेने वाले हैं ना? अरे वो तो हम लोग सब लोग उसमें भाग लेंगे। इंद्रदेव की कृपा चल रही है, देखते हैं कैसा रहेगा। बट मैं भक्त लोग बता रहे थे कि ज्यादा आनंद आएगा वर्षा है तो, और भजन कीर्तन करने में अलग और आनंद आएगा। तो जैसे देखते हैं बाकी इंद्रदेव की क्या इच्छा है, कितनी वृष्टि करेंगे। तो हम आज इस प्रसंग पे संक्षिप्त में मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए इस प्रसंग पे चर्चा करना चाहूंगा। थोड़ा यहाँ पर जीवी मेरे को कठिन लगता है, सब बड़े विद्वान लोग बैठे रहते हैं तो बड़ा कठिन लगता है भागवत पे चर्चा करना, तो मेरा थोड़ा टेंशन हो जाती है लेकिन अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए। तो यहाँ इस श्लोक पे आने से पूर्व मैं सोच रहा था पहले थोड़ा गुंडीचा मार्जन कर लें, नहीं थोड़ा पहले सफाई हो जाए हृदय की, तब भगवान को आमंत्रित करेंगे। रथ यात्रा का वास्तव में उद्देश्य यही है कि भगवान को आमंत्रित करना। ये एक ऐसा त्योहार है, बड़ा क्या बोलते हैं कि इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में जितने वर्ष भी वे जगन्नाथपुरी में, प्रत्येक वर्ष अपने भक्तों के साथ इसमें भाग लिया करते थे। भक्तों को खास आमंत्रित किया जाता था, 4 महीने के लिए आया करते थे और रथ यात्रा में भाग लिया करते थे। तो ये प्रमुख उद्देश्य हुआ करता कि महाप्रभु का संग और रथ यात्रा में भाग लेना, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है हम सब भक्तों के जीवन में ये रथ यात्रा का महत्व को समझना। और ये विचित्र इस प्रकार से है क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये एक मतलब प्रचार का भी है, एक बड़ा सबसे सरल उपाय जो श्रील प्रभुपाद ने आरंभ किया, और साथ ही साथ ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं एसोटेरिक, इट्स लाइक आउटरीच भी है और एसोटेरिक भी है। बड़ा ही इसका एसोटेरिक को हिंदी में क्या कहेंगे, एसोटेरिक अर्थात बहुत ही गूढ़, हाँ गूढ़, एक हमारा जो प्रचार के लिए भी है और साथ ही साथ इसका एक गूढ़ महत्व श्री चैतन्य चरितार्थ में हम देखेंगे। तो इस संदर्भ में जो श्री राधा रानी और जो गोपियों का प्रेम है, जो हमारा क्या बोलते हैं जो सिद्धांत की पराकाष्ठा है, वो भी इसी अध्याय में दी गई। हालांकि सब भक्तों को इसमें भाग लेते हैं, कीर्तन लेते हैं, साथ ही साथ जो भक्ति की पराकाष्ठा है, जो हमारे सिद्धांत की परकीय भाव और कहते हैं भगवान से विप्रलंब भाव का जो विस्तृत जो है विस्तार से जो है इस संदर्भ में समाया गया, इस दृष्टिकोण से देखा जाते रहते हैं। रथयात्रा बड़ा ही एक गूढ़ रहस्य है, तथ्य है। हालांकि रथयात्रा तो कई करोड़ों वर्षों से चली आ रही है, नहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स, मनु दूसरे मनु के समय पे जब वे मंदिर का निर्माण हुआ तत्पश्चात से ही रथ यात्रा चल रही है, लेकिन वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाद ही इसके गूढ़ रहस्य को प्रकट हुआ, अन्यथा उससे पूर्व भी रथ्या हो रही थी, लेकिन खासकर श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पश्चात इसके गूढ़ सिद्धांत को प्रकट किया गया। और खासकर हम श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों के लिए तो इसका खास विशेष महत्व है। श्रील प्रभुपाद जी तो बचपन से ही विचार किया करते थे कैसे रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करें, वो टिकट इकट्ठा किए हुए करते थे, पूरा टाइम टेबल को याद करते थे, कौन कौन सी ट्रेन कलकत्ता या हावड़ा से जगन्नाथपुरी जाया करती है, ऐसा प्रभुपाद जी का चिंतन हुआ करता था कि कैसे रथ यात्रा में भाग ले सकूं, कैसे मैं जा सकूं। तो श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों के लिए, और फिर सर्वप्रथम जब श्रील प्रभुपाद जी को जगन्नाथ जी के विग्रह वहां पर मिले सैन फ्रांसिस्को में, मालती माता जी लेकर आए थे, तो उसके पश्चात भी श्रील प्रभुपाद जी तुरंत वहां दंडवत प्रणाम किए जब वो छोटे से विग्रहों को लेके आई, और फिर बाकी जब बलदेव सुभद्रा जी के विग्रह आए, और किस प्रकार से हम जानते हैं श्याम सुंदर जी प्रभु ने इस्कॉन के प्रथम जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा जी के विग्रहों को जो है रूप दिया, कार्व किया, तब श्रील प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ की, जिसमें न्यू जगन्नाथपुरी के नाम से उसे प्रसिद्ध है सैन फ्रांसिस्को। उसके पश्चात पूरे विश्व भर में, अभी 4 तारीख को जो रथ यात्रा हुई तो विश्व के कई कोनों में रथ यात्रा का महोत्सव मनाया गया, करीब करीब 200 से अधिक रथ यात्राएं हुई होंगी, नहीं जैसे चिन्नंदनपुर विश्व भर में इतना तो करीब 50 तो बांग्लादेश में हुई। दामोदरपुर भी कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश गए थे तो बता रहे थे कि बांग्लादेश में ही केवल 50 रथ यात्राएं रथ यात्रा के दिन, और उनका कमांडो और आर्मी और जो भी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती है वो लोग आके सहायता करते हैं उस रथ यात्रा के आयोजन में। इस प्रकार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इस गूढ़ रहस्य को जो है पूरे विश्व भर में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो इसलिए हम गौड़िया भक्तों के लिए तो एक बहुत ही सबसे प्रमुख महोत्सव है रथ यात्रा का। और जगन्नाथ जी तो विशेष कलयुग के अवतार हैं, कलयुग में थोड़ा कृपा वाला आदमी चाहिए, भगवान चाहिए, नहीं तो कोई स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड वाले भगवान हो जाते तो कठिन हो जाता, नहीं हम लोगों के कलयुग लोगों के लिए वो क्या है, कलयुग के लिए ऐसा चाहिए 8वीं 10वीं फेल BA BCOM पास करें। वो पहले होता था बंबई की लोकल में, आजकल वो सब निकाल दिए, नहीं पहले लगा रहता था बहुत सारे, पता नहीं अभी आगे, पर कलयुग में आवश्यकता है ऐसे भगवान की जो थोड़ी कृपा करें। पहले बहुत था, देखा आपने लोकल में, बंबई की लोकल में वो 8वीं 10वीं फेल BA BCOM पास करें, पता नहीं क्या करते होंगे, बट ये कलयुग के लिए यही है, मतलब अभी हमारी योग्यता नहीं है भगवत भक्ति करने की। और गूढ़तम रहस्य शास्त्रों का वह इस रथयात्रा के वाम से हम सबको सरलता पूर्वक श्रील प्रभुपाद ने दे दिया, ये बहुत विशेष कृपा है। द हाइएस्ट सिद्धांत ऑफ लव ऑफ द गोपीज एंड सेपरेशन फ्रॉम द गोपीज एंड दिस इज द मोस्ट एसोटेरिक द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द सिद्धांतास इज प्रेजेंटेड थ्रू दिस पास टाइम ऑफ रथयात्रा। सो दिस इज लाइक वेरी ग्रेट मर्सी, हम लोग के लिए बड़ी विशेष कृपा है। तो इससे पूर्व कि हम रथ यात्रा में जाएं तो थोड़ा सा हृदय का शुद्धिकरण, कुछ दिन पूर्व बता रहे थे कि तरुण निताय पर उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की गुंडीचा मार्जन पे, तो हम लोग उस लीला पे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो महाप्रभु की जब इच्छा हुई कि भाई गुंडीचा मार्जन करेंगे, और गुंडीचा मंदिर सबको मालूम होगा जगन्नाथ जी जहाँ रहते हैं उसको श्री क्षेत्र कहते हैं, श्री क्षेत्र तो जगन्नाथपुरी को कहते हैं, जो श्री मंदिर, हाँ श्री मंदिर, हाँ जगन्नाथ के पंडा लोग बैठे हैं यहाँ, तो श्री मंदिर से भगवान गुंडीचा में जाते हैं। तो श्री मंदिर जो है वो द्वारका का रूप है, और गुंडीचा जो है श्री वृंदावन धाम का। श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय किया कि हम गुंडीचा का मार्जन करेंगे, गुंडीचा की साफ सफाई करेंगे ताकि भगवान वहां आ सकें, सिंहासन पर स्थित हो सकें। तो उन्होंने काशी मिश्रा जी को बुलाया, वहां के जो टेंपल कमांडर थे, सुपरिंटेंडेंट थे, और सार्वभौम भट्टाचार्य, इन लोगों को बुलाया अपने पास कि भैया आइए, और हमारी इच्छा है कि हम अपने भक्तों के साथ जाकर गुंडीचा मार्जन करें, गुंडीचा में जाके थोड़ा झाड़ू पोछा लगाएं, साफ सफाई करें। तो रथ यात्रा से पूर्व, और तो उन लोगों ने कहा कि भाई सर्वम भट्टाचार्य ने भी कहा कि ये तो एक
मतलब झाड़ू पोछे वालों को हम लोग बोल देंगे, वो लोग आके साफ सफाई कर देंगे, आपके लिए इसको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी यदि इच्छा है तो हम इसमें सहयोग देंगे, आपकी इच्छा है तो हमारे को तो प्रताप रुद्र महाराज की स्टैंडिंग ऑर्डर थी कि भाई महाप्रभु जो भी कहें वो कार्य पूरा हो जाना चाहिए, बिल्कुल 100% सपोर्ट उस कार्य को मिलना चाहिए। तो इसलिए हमें तो ये आज्ञा दी गई है राजा द्वारा, आप जो भी कार्य करना चाहें हम उसमें सहयोगी बनेंगे, लेकिन आपकी करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग झाड़ू पोछे काम तो बोल देंगे, स्टाफ को लगा देंगे हमारे, और वो फटाफट 2-4 घंटे में झाड़ू पोछा लगा के निकल जाएंगे। लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, हमारी इच्छा है हम अपने भक्तों के साथ भगवान स्वयं इस सिंहासन पर विराजमान होने वाले स्थान पर विराजमान होने लेते हैं, तो हम स्वयं अपने भक्तों के साथ करना चाहेंगे। तो बोले कुछ आवश्यकता है, तो बोले हाँ कुछ झाड़ू और पोछे लाकर दे दीजिए, और झाड़ू और मटका और पानी के लिए व्यवस्था कर दीजिए। तो वह सुपरिनटेंडेंट साहिब जी करीब 100 झाड़ू लेकर आ गए, नए झाड़ू खरीद के लाए, अभी महाप्रभु झाड़ू लगाने जा रहे हैं, तो फिर तो नए झाड़ू नए घड़ों की व्यवस्था की गई। तो बड़ा ये दिव्य कार्यक्रम आरंभ कर रहे थे। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गए भगवान और टेम्पल हॉल क्लीनिंग के लिए चले गए। 4:20 यहाँ पर होता है टेम्पल हॉल क्लीनिंग? नहीं, यहाँ नहीं, दिन भर दिन में होता है, बट सुबह नहीं होता ना, मंगल आरती से पहले ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं। राधा गोपीनाथ में भक्त लोग करते हैं 4:20। एक भक्त थे हमारे, अभी भी हैं भक्त, मथुरा मोहन प्रभु, वो जब पहले दादर में रहते थे वहां से चलकर आया करते थे कई दिन रोज, या आश्रम में आने से पूर्व, मालूम है आपको जैसे जनेंद्र, कई दिन दादर से वो चलकर आते थे राधा गोपीनाथ में झाड़ू लगाने के लिए। आज भी हैं कुछ भक्त राधा गोपीनाथ में, वरिष्ठ वैष्णव सीनियर मंदिर के अध्यक्ष लोग, जो भी बिल्कुल नियमित पूर्वक आके अपना झाड़ू लगाएंगे राधा गोपीनाथ के। उनको महाराज जी ने कहा था कि आप कभी भी निम्न सेवा को त्यागना मत, मंदिर के एक अध्यक्ष ने उनको आज्ञा दी थी। तो वह कुछ भी हो जाए हर हफ्ते में एक दिन आके, यदि कभी वो बाहर जाते हैं 1-2 महीने के लिए, तब भी जब वे लौट कर आते हैं तो जैसे उनको शुक्रवार को करते हैं, तो जब वो लौट कर आते हैं तो बोले कि मैं 1 महीना नहीं था तो मेरे 4 जो है ये सेवा मिक्स हो गई, तो आके फिर शुक्रवार शनिवार या रविवार शुक्रवार आके झाड़ू लगाएंगे। ये भगवान की सेवा में इतना उत्साह के साथ भक्त लोग करते हैं। थोड़ा महत्वपूर्ण यहाँ श्री महाप्रभु उदाहरण बता रहे हैं किस प्रकार से करना चाहिए। तो जब सब भक्तों को आमंत्रित किया गया था कि भाई जिन जिन को करना है आ जाएं सुबह 4:20 को, रिपोर्टिंग टाइम है, अटेंडेंस नहीं था, बट महाप्रभु जब बुलाएंगे तो सब अपने आप आ ही जाएंगे ये झाड़ू लगाने के लिए। सबको आमंत्रित किया जा रहा है, विशेष आमंत्रण। एक बार याद है जब वो वृंदावन फॉरेस्ट का राधा गोपीनाथ में जब सफाई हुई थी, वहां पर पूरा कचरे का ढेर था, तब श्री चैतन्य प्रभु हमारे मंदिर के कमांडर थे, तो उन्होंने सबको ब्रह्मचारी को आदेश दिया कि भाई आ जाइए, सब लोग महाराज जी बुला रहे हैं, महाराज बुला रहे हैं, शायद महाराज कुछ संग देंगे, कथा करेंगे। सब लोग बड़े उत्साह के साथ हम लोग गए वहाँ, और बाद में बोले नहीं महाराज जी की आज्ञा ये साफ सफाई करना है और यहाँ पर एक जो है वृंदावन फॉरेस्ट का निर्माण होगा। तो कहने का भाव है कि निम्न सेवा के लिए यहाँ पर महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से उदाहरण के साथ दिखा रहे हैं सबको। जब महाप्रभु ने सबको बुलाया, सबको चंदन लगाया, सबके माला अर्पण किया, कुछ लोगों को, सबके लिए माला नहीं होगी, माला दिया सबको, चंदन लगाया, सुंदर माला अर्पण की, सबको एक एक हाथ में पर्सनली झाड़ू दिया महाप्रभु ने, ये लीजिए झाड़ू, वो सबकी आपको ये सेवा के लिए ये जो माध्यम है ये आप सबको एक एक हाथ में नया नया झाड़ू सबको दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। वो आप वाला झाड़ू नहीं है, वास्तव में जो साफ सफाई करेगा झाड़ू, इस प्रकार से, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन नहीं था, ये भगवान स्वयं बता रहे थे किस प्रकार से कितना महत्वपूर्ण है ये सेवा, भगवान के मंदिर का मार्जन करना, उसके माध्यम से भगवान महाप्रभु बता रहे थे कि इस प्रकार से महत्वपूर्ण है हृदय का मार्जन करना, तभी हम वास्तव में जगन्नाथ रथ यात्रा का यही उद्देश्य है कि भगवान जगन्नाथ जी को अपने हृदय में आमंत्रित करना। अभी घर में कोई आता है तो हम लोग बड़े घर, कोई अपने घर में कोई आता है, कोई प्रभु जी आए, कोई सीनियर भक्त आए, तो हम लोग साफ सफाई करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं कि नहीं, जमुना बिहारी प्रभु करते हैं बिल्कुल, कोई प्रभु जी आए या कोई आए महाराज आए या कोई भी आए घर, तो हम अपना पूरा बिल्कुल जितनी जाए जान लगा के साफ सफाई करते हैं। उसी प्रकार से जब हमें भगवान को आमंत्रित करना है, श्री जगन्नाथ जी को अपने हृदय में आमंत्रित करना है, तो हमें बहुत अथक परिश्रम करके साफ सफाई करना है। यही वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और कुछ नहीं, केवल झाड़ू लगाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, झाड़ू पोछा लगाना यही हमारे जीवन का वास्तव में यही उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं करना है हमें। जो भी हम भजन कर रहे हैं, जो भी हम नाम जप कर रहे हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, बेसिकली हृदय का झाड़ू लगा रहे हैं, हृदय में झाड़ू लगाना वही एकमात्र उद्देश्य है। ये हमें स्मरण होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, कोई भी सेवा क्यों कर रहे हैं। यदि उसमें हमारी चेतना नहीं सही है तो उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। हालांकि भगवत सेवा में लगे हुए हैं, यदि सही चेतना नहीं भी है तो भी लाभ ही है, परंतु अधिक लाभ तब प्राप्त होगा जब हम लोग ये जानेंगे कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कि हम ये हृदय में झाड़ू लगा रहे हैं, बस हमारे जीवन का उद्देश्य यही है, झाड़ू लगाना केवल। तो ये हमारा प्रमुख, यहाँ पर महाप्रभु अपने आदर्श उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं। तो स्वयं महाप्रभु अपने उदाहरण के द्वारा लग गए बिल्कुल उत्साह के साथ झाड़ू लगाने के लिए। सब स्थानों में पूरा जो छत को ऊपर, छत पे भी जाले वाले लगे हुए थे, उन सबको भी उतार रहे थे, ऐसे महासन को स्वयं महापुरुष साफ कर रहे थे। पूरे एरिया में झाड़ू लगाया गया, पूरे एरिया में जहां पर भी पीछे बाहर देखा है, बहुत बड़ा एरिया है गुंडीचा मार्जन। कितने लोगों ने किया है गुंडीचा मार्जन, सब लोग, अधिकांश थे सब लोगों ने किया, लेकिन हम लोग कई बार करते तो ज्यादा गंदा करके आ जाते हैं, नहीं व्यवस्था बिल्कुल क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज रूप से नहीं होता। कई बार ऐसा अनुभव है हमारा, नहीं ये सब एक इधर उधर से उधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, लेकिन यहाँ महाप्रभु पर्सनली उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, किधर कौन झाड़ू लगाएगा, किधर पोछा कौन लगाएगा। बाद में आएगा प्रसंग में कैसे महाप्रभु ने तो एरिया ऑर्गेनाइज कर दिया कि भाई तुम्हारा एरिया ये है, तुम्हारा एरिया ऐसा ऐसा करके एरिया भाग बांट दिया गया था। इस प्रकार से जो है महाप्रभु स्वयं झाड़ू लगा रहे थे प्रत्येक आंगन में। प्रेमोल्लास शोधेर लयन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। बड़ा सुंदर प्रसंग में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रेम उल्लास शोधेन लयन कृष्ण नाम। क्या कर रहे थे भक्त लोग, सफाई करते करते किनका नाम ले रहे थे, कृष्ण का नाम। नहीं, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि सो नहीं गए। किसका नाम ले रहे थे भगवान भक्त लोग, कृष्ण का नाम ले रहे थे। नहीं, मेरे लाइट ये सब मेरे ऊपर आ रहा है, मेरे को दिख नहीं रहे ठीक से, तो मुझे लग रहा है कहीं सो गए भक्त लोग। ऐसे सोने में भी लाभ है, लेकिन कोई बात नहीं, कथा में सो भी गए तो भी लाभ ही है, कोई उसमें घाटा नहीं है, कथा में आके सोए। भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे थे, नाम जप के साथ साथ काम भी कर रहे थे। पूरा भगवान श्री महाप्रभु का सुंदर स्वरूप जो है रज से बिल्कुल रंजित हो गया था, पूरा भर गया था, और बहुत सुंदर दर्शन हो रहा था। भगवान का स्वर्णिम अंग कांति, उसके ऊपर जो रज थी और आंखों से अश्रु धारा बह रही थी महाप्रभु के, और सब भक्तों ने मेहनत करके बिल्कुल आकर्षित करके जो है सब जो स्ट्रॉज और जो भी तिनके थे, धूल के कण थे, बिल्कुल इकट्ठे कर लिए सबने अपने अपने उसमें, क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु ने अपने उदाहरण के द्वारा दिखाया कि वो अपना चादर लेके उसी में इकट्ठा कर रहे। शायद वो स्कूप लाना भूल गए होंगे, नहीं सुप्रिंटेंडेंट, या फिर नहीं होगा, जो भी कारण हो, तो अपने अपने अंग वस्त्र से ही महाप्रभु उसको इकट्ठा कर रहे थे, धूल के कणों को सब उसमें एकत्रित कर रहे थे। तो सब भक्तों ने देखा कि नहीं नहीं सब महाप्रभु स्वयं अपने अंग का कर रहे हैं, तो सब भक्त लोग भी वहां पर अपने अपने वस्त्रों के द्वारा उसको जो है कठिन होता है, नहीं वस्त्रों के प्रति बड़ी आकर्षण होता है। अभी कल ही हम मदन मोहन जी का दर्शन करने गए तो दंडवत करने में बड़ी हिचक हो रही थी कि कैसे प्रणाम करेंगे, कपड़े गीले हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, लेकिन एक भक्त थे वहां पर जो बिल्कुल हमने देखा बिल्कुल दंडवत कर दिए, साष्टांग दंडवत, ध्यान नहीं दे रहे कि कपड़े गंदे हो गए। नहीं, तो हम लोग विचार कर रहे थे कि हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, तो भगवान को दंडवत भी नहीं कर रहे थे ठीक से, तो वो भी आवश्यक है ध्यान देखना। लेकिन यहाँ महाप्रभु अपने भाव से दिखा रहे थे कि कैसे वो स्वयं अपने अंग वस्त्र से उसमें एकत्रित कर रहे थे कचरा, ऐसा नहीं कि गंदा हो जाएगा कपड़ा, नहीं उसमें लेकर सब अपने कर, सब भक्त लोग भी देख कर, तो महाप्रभु जाके बाद में देख रहे थे किसने कितनी सफाई की, आपके कितना इकट्ठा किया कचरा, आपने कितना इकट्ठा किया, एक एक के पास जाके देख रहे थे इस पर्सनल। और कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि महाप्रभु ने जो एकत्रित किया था वो सब भक्तों से अधिक, सब भक्तों का मिला लिया जाए, सब भक्तों ने जितना 50-100 जितने भी 100 से अधिक भक्त थे, जितना कचरा एकत्रित किया था महाप्रभु उससे अधिक ढूंढ के निकाले थे, साफ सफाई किए थे, एक एक कोने कोने में जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े उत्साह के साथ झाड़ू लगा रहे थे। अपने उदाहरण के द्वारा बता रहे थे कि कितने उत्साह के साथ सेवा करना चाहिए। वास्तव में उत्साह ही एक भक्त की क्या बोलते हैं जान है। अगर सेवा में उत्साह नहीं है तो भगवान को भी वो स्वीकार करने में आनंद नहीं आएगा। नहीं, किसी गेस्ट के पास जाएं अगर हमें खुद ही उत्साह नहीं हो और बिल्कुल मुरझाई हालत में जाएं, अरे कुछ चाहिए क्या आपको प्रभु जी, अभी वो आपका चेहरा ही ऐसा मुरझाया हुआ है और हालत खराब है, तो क्या कोई उसमें स्वीकार करेगा? बोले छोड़ दो, मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो भगवान की सेवा में भी भगवान देखते हैं हम उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं कि नहीं। अगर उत्साह ही नहीं है तो भगवान बोले ठीक है यार, कोई ये रहने दो यार, एहसान मत करो, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा, मेरे और भक्त हैं बहुत सारे सेवा कर लेंगे। अगर हमें उत्साह नहीं है तो नहीं। जैसे चिन्नंदनपुर ने बहुत अतिथियों का सेवा किया राधा गोपीनाथ मंदिर में, महाराज बहुत प्रसन्न थे। लेकिन जैसे कोई अगर उत्साह के साथ नहीं जाए तो कोई गेस्ट भी बोलेगा नहीं नहीं कुछ सेवा करने की। बोले छोड़ दो यार, मैं खुद ही नीचे आके खा लूंगा। बोले प्रसाद लाऊं क्या आपके लिए प्रभु जी, अगर जरूरत है तो लाऊं क्या? मतलब इस तरह से अगर भाव रहेगा हमारा तो ये छोड़ो यार, मैं खुद ही नीचे आके प्रसाद ले लेता हूँ या कर लेता हूँ सेवा। तो महा भगवान के समक्ष भी यदि हम जाएं अगर उत्साह नहीं है, महाराज राधानाथ महाराज क्या करते थे, कोई बात नहीं अगर उत्साह नहीं है तो कोई बात नहीं, उत्साह का नाटक कर लो, एक्ट एंथुजियास्ट की, कोई बात नहीं धीरे धीरे आ जाएगा। ये उत्साह भी क्या बोलते हैं कंटेमिनेटिंग होता है, कंटेमिनेटिंग अर्थात हाँ जी नहीं अशुद्ध नहीं इन्फेक्शियस होता है, स्प्रेड हो जाता है। हाँ जी मिला हुआ भी नहीं कह सकते, चलो समझ गए ना सब भक्त लोग। हाँ जी एक दूसरे से क्या बोलते हैं वो संसर्ग, ये तो मुझे भी नहीं समझ आया बट कोई बात नहीं, कहने का बड़ा कठिन हो गया बट कहने का भाव है कि ये स्प्रेड हो जाता है उत्साह, इसलिए बड़ा आवश्यक है। कई बार होता है भक्ति में उत्साह ही नहीं रहता है, नाम जप करने के लिए ढीला डाले, अरे थक गए यार शरीर टूट रहा है, या सेवा में भी उत्साह नहीं रहता, तो कोई बात नहीं कई बार उत्साह का नाटक कर लेना चाहिए, उसमें भी हमें भी उत्साह आएगा और दूसरे को भी, हमारे जो बाजू में रहेंगे उसको भी उत्साह आएगा। तो उत्साह के नाटक से भी कई बार धीरे धीरे भगवान देखेंगे चलो यार ये भक्ति में उत्साह तो नहीं है, नाटक ही कर रहा है, इसको थोड़ा उत्साह दे दो, चलो इसको थोड़ा सा कृपा कर दो शायद, तो थोड़ा हमें भी उत्साह आ जाएगा। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण, और ये हम सबके जीवन में आएगा, कभी उत्साह तो कभी उत्साह नहीं, जब तक शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आ जाते ये जो तलता रहेगा ऊपर नीचे, तो कभी उत्साह तो कभी नहीं उत्साह। तत्पश्चात जब सब साफ सफाई अच्छे से हो गई, महाप्रभु अपने उदाहरण के दिखाए कितने उत्साह के साथ किया। हाँ तत्पश्चात महाप्रभु ने क्या किया वो, हाँ एरियाज एलोकेट कर दिए। एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में भी किया था, महाराज की बड़ी इच्छा थी कि भाई साफ सफाई नहीं हो रही है, रख रखाव नहीं हो रहा है, तो कि ये वृंदावन फॉरेस्ट का एरिया इनका है और लक्ष्मीनारायण गार्डन इनके अंडर है, और इस याद है आपको सबको एरियाज एलोकेट किया गया था थोड़ा थोड़ा किसी का ये, लेकिन वो चला नहीं, सब भक्त लोग ज्यादा किए नहीं सेवा, तो वो व्यवस्था यहाँ वहाँ नहीं चली। बट यहाँ पर महाप्रभु ने एलोकेट कर दिया कि भाई आप सिंहासन के आसपास करेंगे, आप बाहर का साफ सफाई करेंगे, आप दरवाजे साफ करेंगे, इस प्रकार से जो है पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिकली एरियाज ऑर्गेनाइज कर दिए गए महाप्रभु द्वारा। और उसके पश्चात महाप्रभु ने कहा कि अभी हो गया ये, दो बार अच्छे से झाड़ू हो गया, अभी क्या करना पड़ेगा, पानी से साफ सफाई करेंगे। तो महाप्रभु तैयार हो गए, आदेश दिया कि भाई पानी लेकर आओ, तो सब भक्त लोग तैयार थे घड़े लेकर पहले ही, बिल्कुल उत्साह के साथ पहले से ही रखे थे, 100 ही घड़े थे तो ज्यादा भक्त थे, तो बिल्कुल पहले से ही पकड़ लिया था घड़ों को सेवा के लिए उत्साह। जब मैं जिन भक्तों की बात भक्त की बात कर रहा था, जो मंदिर के अध्यक्ष जो राधा गोपीनाथ में झाड़ू लगाते हैं, तो वो उनको पोछा लगाने में थोड़ा तकलीफ होता है पीठ की वजह से, तो कई बार क्या होता था वो 4:20 की जगह 4:30 पहुंचते थे, तो सब भक्त लोग झाड़ू ले लेते थे, मीटिए वाले सब झाड़ू ले लिया करते थे, तो वो विचार करने लगे क्या करूं मैं, तो वो उससे पहले उठ जाया करते थे, 4:15 को पहुंच जाते थे और झाड़ू पकड़ के खड़े हो जाते कि जैसे ही लाइट हो गया मैं झाड़ू लगाऊंगा, तो यह उनका उत्साह था। यहाँ पर भी भक्त लोग पहले से ही मटका पकड़ के खड़े थे, छोड़ूंगा नहीं मैं लेके आऊंगा पानी, लेकिन सब बड़े उत्साह के साथ लगे हुए थे कि ऐसा नहीं कि तुम ले लो भैया मटका, तुम लेके आओ पानी, मैं क्यों लेके आऊँ, नहीं मैं लेके आऊंगा पानी। भक्त लोग बड़े उत्साह के साथ लगे हुए थे, तो 100 मटके थे, सब लोग गए, नरेंद्र सरोवर से लाए थे पानी, इंद्रधनु सरोवर अच्छा ओ हाँ इंद्रधनु सरोवर गुंडीचा के पीछे पीछे हैं, तो वहां से वो सब लोग जो है मटकों में जल लेके आए थे। और महाप्रभु पहले आदेश दिया कि पहले वो सीलिंग के ऊपर, पहले छत के ऊपर पानी डालो, कि वही पानी फिर नीचे आएगा दीवारों को साफ करेगा, और फिर तो प्लानिंग भी आवश्यकता है सेवा में। महाप्रभु बिल्कुल प्लान करके कर रहे थे कि पहले छत पे डालो, फिर दीवारों पर साफ करो, और फिर नीचे के आंगन में जो है आप पानी डालिए, और फिर पानी को झाड़ू के द्वारा और मॉप के द्वारा, पोछे के द्वारा, पोछा नहीं था शायद, वो अपने कपड़े से ही कर रहे थे, पोछा लगा रहे थे, पोछा नहीं लाके दिया था सुपरिंटेंडेंट जी ने, पता नहीं जो भी है, महाप्रभु ऐसा वर्णन है कविराज गोस्वामी द्वारा कि अपने कपड़े के द्वारा ही पानी को निकाल रहे थे, बिल्कुल उत्साह के द्वारा पानी को निकाल रहे थे, बिल्कुल और सब बड़े भक्त उत्साह के ला रहे थे, कुछ लोग मटके टूट भी जा रहे थे, सब जल्दी जल्दी में ला रहे थे, जब जब भी में ला रहे थे, बिल्कुल जल्दी में ला रहे थे, कोई जल्दी में एक दूसरे को दे रहे थे, चलो तुम लेके जाओ, तो लाइन जैसा बना के वो सेवा कर रहे थे। तो इस प्रकार से कृष्ण कृष्ण कही करे घटे प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पणा। तो किसी को मांगना होता तो क्या कह देते थे? कृष्ण कृष्ण। और देना होता तो देते वक्त क्या बोलते थे? नहीं नहीं इतनी धीरे नहीं बोलते थे, कैसे बोलते थे? जब घड़ा मांगते थे तो क्या बोलते थे? कृष्ण कृष्ण। और देते वक्त क्या बोलते थे? कृष्ण कृष्ण। तो जो लोग सो रहे थे उठ गए, तो महाप्रभु इस प्रकार से लगे हुए थे। और फिर महाप्रभु जब देख रहे थे कि बहुत भक्त जो उत्साह के साथ कर रहे हैं, भाला कर्म देखी करे कारे करे प्रशंसन, मने ना मिली ले करे पवित्र भर्त्सन। बड़े उत्साह के साथ जो सेवा कर रहे थे, महाप्रभु कहते थे थैंक यू वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा साफ सफाई किया, बहुत अच्छा झाड़ू लगाया, बहुत अच्छे घड़े लेकर आए, फटाफट भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और जो लोग थोड़ा ठीक से नहीं कर रहे थे उनको भी थोड़ा पवित्र भर्त्सन, बिल्कुल थोड़ा डांट रहे थे कि आप लोगों ने जो इन्होंने अच्छा किया उनको बोलते थे आप लोग सिखाओ इनको कैसे झाड़ू लगाना है अच्छे से, कैसे उत्साह के साथ झाड़ू लगाना है, कैसे पोछा लगाना है। फिर बाद में कुछ सजा भी दी थी उन लोगों पर, क्या आप लोग जब यहाँ इनको पीठा वगैरह खिलाना लाके, विशेष जिन लोगों ने ठीक से नहीं किया, आप लोग सब मिलके इन भक्तों को जिन्होंने किया अच्छे से इनको खाजा और लड्डू और खीर गाजा और जो भी है रसगुल्ला रसमलाई और छेना पोड़ा लेके आना और इन सब भक्तों को खिलाना जो लोग अड़े उत्साह के साथ सेवा की। हम लोग भी मंदिर में राधा गोपीनाथ में करते थे, VTA में जो नहीं आता था मंगल आरती या कोई सेवा में नहीं आता था उससे 50 रुपये लेके बाद में सब भक्त गोविंदास में जाते थे VTA वाले। तो ऐसा ही वो परंपरा में चला आ रहा है कि पनिशमेंट, वो पनिशमेंट भी लाभ है महाप्रभु की जो है, क्या बोलते हैं पनिशमेंट अर्थात है दंड, दंड दंड भी वैसे वो क्या है, दंड भी क्या है, भक्तों को प्रसन्न करना, ये दंड दिया उनको कि इन भक्तों को पीठा खिलाओ लड्डू खिलाओ खाजा खिलाओ और मालपुआ खिलाओ रबड़ी खिलाओ, ये पनिशमेंट दी थी। ये महाप्रभु का दंड भी आनंद है, दूसरों को भी आनंद और जो दे रहा है उसको भी आनंद और उसको भी लाभ। वो दंड मतलब कहने के लिए दंड है, वो दंड नहीं, वो एक प्रोत्साहन का माध्यम है और सेवा में संलग्न करने के लिए जो है माध्यम है, वो भी बड़ा शुद्धिकरण का ही कार्य। तो ये भगवान और भक्तों का दंड भी हमारे शुद्धिकरण के लिए ही होता है, ये हम सबको समझना है। बड़ा कठिन है समझना इसको, कई बार जब दंड मिलता है तो बड़ा कठिन होता है उसको समझना, लेकिन वास्तविकता यही है कि भगवान और उनके भक्तों का दंड भी हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही होता है, एकमात्र उद्देश्य यही जो है। भक्त सोचते हैं कि इसको दंड देना मतलब इसको कैसे इसका शुद्धिकरण हो सके हृदय का। उसके पश्चात ऐसे बीच बीच में भी कुछ लोग भक्तों जो घड़े लेके आ रहे थे महाप्रभु के पैर पे डाल देते थे, तो देखते थे कि महाप्रभु इधर उधर कर रहे हैं, थोड़ा पैर पे डाल दिया पानी। लेकिन एक भक्त थे जब महाप्रभु बिल्कुल सिंहासन की साफ सफाई कर रहे थे और जहां पर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी विराजमान होने हैं सिंहासन को पोछ रहे थे, उस समय एक भक्त ने लाके वो घड़े से अपने महाप्रभु के चरणों में पानी डाल दिया और उसका चरणामृत पी लिया उनका। तब महाप्रभु बड़े क्रोधित हो गए, बाह्य रूप से बड़े क्रोधित हो गए कि क्या कर रहा है ये, और उस पकड़ा उस भगत को हाथ से और लेके गए स्वरूप दामोदरपुर के पास। ये देखो ये तुम्हारा बंगाली वैष्णव क्या कर रहा है, ये इसको लेके जाओ बाहर। स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी तब उसको पकड़े और थोड़ा सा थप्पड़ भी मार दिए, अरे चलो बाहर, और उसको लेके गए हाथ पकड़ के बाहर कि चलो क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम इस प्रकार से अपराध कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान स्वयं आने वाले हैं। सुशील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि इस सुंदर प्रसंग के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि सब गौड़िया वैष्णवों को जब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर नियुक्त कर दिया कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी आप इन सब का ध्यान रखिए, ये आपका बंगाली वैष्णव है जो ऐसा इस प्रकार की गड़बड़ कर रहा है, तो आप इसे लेकर जाइए। श्री प्रभुपाद बड़ा सुंदरता तन व्यक्त कि इसका अर्थ यही है कि हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ जाते हैं, गौड़िया वैष्णव स्वरूप दामोदर गोस्वामी, फिर षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौरकिशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपा। तो ये परंपरा को जो है बताने के लिए महाप्रभु कह रहे हैं कि ये तुम्हारा बंगाली वैष्णव, लेके जाओ इसको बाहर, ये गड़बड़ कर रहा है, सिंहासन के सामने ही चरण धोकर उसको पी रहा है, गर्दन से पकड़ कर लेकर गए। और फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको छोड़कर वापिस अंदर आए तो महाप्रभु कहने लगे कि एक्चुअली उसको माफ कर देना, वो गलती हो गई उससे। नहीं, भक्तों की भक्त लोग भी बिल्कुल क्या बोलते हैं, कृपामय होते हैं, हृदय बड़ा कोमल होता है। हालांकि उनको गर्दन से पकड़ के लेके गए थे बाहर, लेकिन जब महाप्रभु के पास लौट कर आए तो कहना इसको माफ कर देना भाई, उससे गलती हो गई थोड़ा, इस प्रकार से महाप्रभु। तो इस माध्यम से यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रसंग में बताया गया कि किस प्रकार से जो है हमें हृदय का जो है शुद्धिकरण करना है। तब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, जो पिछले हफ्ते श्रीमान तरुण निताय प्रो ने बड़े विस्तार से चर्चा किया कि किस प्रकार से जो है ग्रॉस अनर्थ अर्थात और सूक्ष्म अनर्थ, स्थूल अनर्थ और सूक्ष्म अनर्थ दोनों को हमें धीरे 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 हृदय के शुद्धिकरण के माध्यम से हृदय से बाहर फेंकना है उसको। इस प्रकार से वो सब जो भी धूल इत्यादि एकत्रित किया था महाप्रभु और सब भक्त लोग उसको लेके बाहर फेंक दिए थे। बड़ा सुंदर तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद ने लिखा है। तत्पश्चात जब साफ साफ सफाई हो गई, उसके पश्चात नरसिंहदेव जी का मंदिर पीछे है गुंडीचा के, सब लोग गए हैं नरसिंहदेव के मंदिर में गुंडीचा के पीछे है, आप नहीं गए जगन्नाथपुरी? अच्छा आप गए नहीं है जगन्नाथपुरी, अच्छा आपको जाना बाकी है। तो जगन्नाथ मंदिर गुंडीचा के पीछे नरसिंहदेव जी का मंदिर है, वहां पर साफ सफाई की, उसके पश्चात थोड़ा सा विश्राम, भी बहुत थक गए थे। और उसके बाद क्या करेंगे भक्त महाप्रभु? हाँ जी, नहीं विश्राम के बाद भक्त तो क्या करते हैं, नहीं प्रसाद तो लेंगे पहले, उससे पहले थोड़ा कीर्तन भी हो जाना चाहिए ना। ऑफकोर्स क्लीनिंग के वक्त भी कीर्तन ही हो रहा था, लेकिन उससे पूर्व भी महाप्रभु कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। हाँ, मैं अभी थोड़े दिन पूर्व पंजाब गया था, तो वहां पर बता रहे थे कि महाप्रभु की मूवमेंट मतलब क्या है, खाना नचना ते नहीं छकना नचना ते जपना, ये तीन चीज है, ये पंजाबी में बताए हैं, जपना नचना ते नहीं जपना नचना ते खाना, तो यही तीन चीजें हैं हमारा वास्तव में यही है तीन हमारे प्रमुख, भगवान का भजन करना, नाम जप करना, कीर्तन में नृत्य करना, फिर थक जाए श्री प्रभुपाद कहते हैं तो थोड़ा आराम कर लेने का, फिर उसके बाद उठ गए थोड़ा प्रसाद ले लेने का, और फिर वापस कीर्तन कर लेने का। इस प्रकार से जो है बिल्कुल कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि लाइक अ मैडेंड लायन, पागल सिंह की तरह महाप्रभु नृत्य करते थे। पागल सिंह कभी सुना है किसी ने, देखा है कहीं जंगल वगैरह में? नहीं, मैंने भी कैसा अनुभव नहीं किया। पागल सिंह कैसा नाचेगा पता नहीं, बिल्कुल जोर जोर से कूदेगा, ऊपर उठेगा, कैसे करेगा? देखा तुमने कभी लायन सफारी? नहीं, कोई गए नहीं लायन सफारी में भक्त लोग? मैंने भी ऐसा अनुभव नहीं किया। मतलब पागल हाथी तो देखा है फिल्म इत्यादि में, बट पागल शेर की तरह नृत्य कर रहे थे, उछल के दंड नृत्य, नहीं ऐसा ही था ना, कैसा होगा? दिव्य नृत्य, भगवान महाप्रभु का नृत्य। आगे के जब हम रथ यात्रा के प्रसंग में आएंगे तो चर्चा करेंगे कि महाप्रभु का नृत्य कैसा अद्भुत नृत्य होगा। इस जगत के जो भी सबसे बढ़िया नचैया जो भी हैं, जो भी हुए हैं या होंगे, उस नृत्य से करोड़ों अरबों गुना अधिक सुंदर महाप्रभु का नृत्य, उसमें कोई रजोगुण नहीं है। हम सब जो नृत्य करते हैं तो कई बार हमारा रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो हमारा नृत्य भी बिल्कुल झटके झटके हुए दिखता है, लेकिन महाप्रभु जब नृत्य करते हैं इसका हम अनुमान नहीं कर सकते। महाप्रभु का नृत्य कैसा अद्भुत सौंदर्य और कैसा अद्भुत दिव्य नृत्य होगा श्रीमान महाप्रभु का। आंखों से अश्रु की धारा और पूरा शरीर कंपित हो रहा है और पूरा पसीना और बड़ा दिव्य उन्माद से श्री महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। तो महाप्रभु ने नृत्य करते करते खींच लिया श्री गोपाल को, अद्वैताचार्य जी के पुत्र को, कि आप भी नृत्य करो। ऐसा होता है ना, डांस करते करते खींच लेते हैं, उनको खींच लिया श्री गोपाल को कि आप भी नृत्य करो, लेकिन वो नृत्य इतना शक्ति से करने लगे कि वो पूरे बेहोश हो गए और गिर गए नृत्य करते करते श्री गोपाल। अद्वैताचार्य जी पास में गए, अपनी गोद में बिठा लिया और सब भक्त लोग विचार करने लगे, अरे ये तो बड़ा अच्छा कीर्तन पार्टी चल रही थी, ये सब बड़ा सुंदर महोत्सव था, ये क्या हो गया, ये भक्त हमारे बेहोश कैसे हो गए नृत्य करते करते। तो महाप्रभु सब लोग वहाँ नरसिंह आरती गाने लगे, नरसिम्हा करने लगे और नरसिंह आरती गाने लगे और जल ला के वहाँ छिड़का। तब महाप्रभु ने देखा कुछ नहीं हुआ, तो महाप्रभु जाके उसकी छाती पे अपना हाथ रख दिए और जोर से कहने लगे गोपाल उठ। तो क्या हुआ, गोपाल वहीं तुरंत उठ गए और फिर नृत्य करने लगे। इस प्रकार से बड़ा सुंदर महोत्सव हुआ। फिर उसके पश्चात स्नान किया, नृत्य के पश्चात भी झाड़ू पोछा कर दिया, विश्राम हो गया, नृत्य भी हो गया, उसके पश्चात थोड़ा स्नान कर लेना चाहिए, नहीं पसीना इत्यादि आया होगा। अरहा की भगवान का तो दिव्य पसीना भी दिव्य है, भक्त लोग भी थे तो सब स्नान इत्यादि करने के पश्चात अभी क्या करेंगे, नृत्य भी हो गया, सेवा भी हो गई, तो क्या करना चाहिए? हाँ, महाप्रसाद। श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, वाणीनाथ राय जी, प्रताप रुद्र महाराज जी का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था कि महाप्रभु जहाँ भी रहे सब व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो कुछ क्या बोलते हैं, सिपाही लोग हमेशा गार्ड रखते थे, महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं, क्या व्यवस्था पड़ेगी उनको, क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सब तुरंत व्यवस्था हो जाती थी। वाणीनाथ राय ने जब देखा कि सब भक्त लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, तो बहुत सारा श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद काशी मिश्रा स्वयं और तुलसी जो उस समय वहाँ के अध्यक्ष थे, वह बहुत सारा अन्न, पीठा, अलग अलग प्रकार के खीर, खीर गाजा, छेना पोड़ा और अनेकों प्रकार की सब्जियां और दाल और सब बहु मात्रा में जो है जगन्नाथ जी का प्रसाद वहां पर लेकर आए, और महाप्रभु स्वयं वहां पर बैठ गए। परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, अद्वैताचार्य, श्री नित्यानंद प्रभु, आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, शंकर पंडित, नंदन आचार्य, राघव पंडित, वक्रेश्वर पंडित और अनेकों अनेकों भक्त भगवान के, महाप्रभु के असंख्य भक्त वहां पर प्रसाद के लिए बिल्कुल लाइन में बैठ गए। महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बुला रहे थे कि भाई आप भी आ जाओ, तो कहने लगे नहीं नहीं अभी नहीं। तो गोविंद को फिर उन्होंने कहा कि आप उनको, प्रत्येक भक्त का महाप्रभु ध्यान रखते थे, ऐसा नहीं कि भाई भूल गए, हरिदास ठाकुर पीछे हैं तो उनको भूल गए, नहीं, हरिदास ठाकुर को भी, हरिदास ठाकुर जी का भी भगवान ध्यान रखते थे कि ठीक है आप अभी नहीं आ रहे कोई बात नहीं, गोविंदा को खास कहा भैया इनके लिए डब्बा बना देना, इनको बाद में पहुंचा देना, डब्बा बना के रख देते थे, डब्बा या जो भी जिस प्रकार से भी होगा मटके लेके चले जाया करते होंगे गोविंद के लिए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित, गोपीनाथ आचार्य, वाणीनाथ, जो ब्रह्मांड के जो सीनियर भक्त थे वो लोग सब सर्विंग में लग गए प्रसाद की सर्विंग के लिए। महाप्रभु बड़े आनंद के साथ, महाप्रभु ने कहा कि भाई सब भक्तों को अच्छा अच्छा प्रसाद दो, सब पीठा जो भी है इत्यादि दो, मैं लाफड़ा व्यंजन खा लूंगा। प्रभुपाद लिखते हैं उबला हुआ व्यंजन जो होता है वो भूख लगता है, लाफड़ा व्यंजन महाप्रभु को, जगन्नाथ जी को है लाफड़ा व्यंजन का भोग लगता है जगन्नाथ जी को पुरी में? नहीं, जो भी है वो भी था उसमें, उबला हुआ व्यंजन, उबली हुई सब्जियां थी, थोड़ा सा छोंक मारा हुआ था, नॉन स्पाइसी फूड, जो भी बीमार लोगों का नहीं बोलना चाहिए, हेल्दी लोगों जो रहना चाहते उनका भोजन वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा कहना, तो वहां पर लेके आ गए। नहीं, ऐसा नहीं, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो खाएगा वो स्वस्थ ही रहेगा, उस चेतना से जो खाएगा वो स्वस्थ रहेगा, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कि मेरे को वो लाफड़ा लाके दे दो, बाकी जो भी खीर गाजा और छेना पोड़ा और जो भी रसगुल्ला और रसमलाई और कौन सा सब्जी क्या होती है दोस्त, सब्जी के नाम बताइए, जगन्नाथपुरी में जो भोग लगाते हैं, शाक तो रहता ही है और सब्जी क्या होती है, बेसर, बेसर, महुरा, महुरा, बेसर इत्यादि जो भी सब्जियों का जो है लेके आए, तो बोले ये सब बाकी भक्तों को बांट दीजिए, मेरे को खाली वो उबली हुई लाफड़ा ला कर दे दीजिए। और फिर लेकिन अभी वो सर्विंग में एक भक्त थे जो थोड़ा महाप्रभु के साथ थोड़ा एक अलग संबंध था, कौन थे, उनका नाम था जगदानंद पंडित, तो वो जाके महाप्रभु की थाली में डाल दिया करते थे लाफड़ा के साथ साथ, वो थोड़ा महुरा, थोड़ा बेसर और थोड़ा शाक और थोड़ा दाल भी डाल देते थे, और थोड़ा वो जो क्या विशेष अन्न होता है ना, घी अन्न, और थोड़ा वो खिचड़ी होती है जगन्नाथ की बड़ी खिचड़ी, तो वो सब डाल दिया करते थे। तो महाप्रभु तब अभी जगदानंद पंडित से थोड़ा सा ऐसा संबंध था, प्रेम का संबंध, विचित्र प्रेम का संबंध था, जिस प्रकार से सत्यभामा जी और कृष्ण का संबंध था, तो यहाँ जगदानंद पंडित जी का वो रोल था, तो डर जाया करते थे महाप्रभु, अरे ये नहीं खाऊंगा तो ये नाराज हो जाएगा, उनकी प्रसन्नता के लिए महाप्रभु खा लिया करते थे। जैसे ही वो खाते तो जगदानंद पंडित भी तुरंत देख, उनका ध्यान रहता था महाप्रभु की थाली में क्या खत्म हो रहा है, एक पीठा खत्म हुआ तो पीठा लेके आओ या ये लेके आओ, जो भी खत्म हुआ वो लेकर आया करते थे, ऐसा प्रकार से जो है वो हमेशा वहां पर सर्विंग किया करते थे पर्सनली। और महाप्रभु सब सबके हृदय में स्थित हैं, सबके हृदय में जानते थे किस भक्त को क्या पसंद है, तो महाप्रभु जाके सर्वर्स को बोला करते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये भक्त को खाजा पसंद है, इसको खाजा दे दो, ये इनको लाफड़ा पसंद है, नहीं लाफड़ा शायद नहीं, लाफड़ा भी कुछ भक्तों को पसंद होगा, इनको लाफड़ा दे दो, ये इन भक्त को क्या पसंद है, बेसर पसंद है, इसको ये सब्जी जाके दो, जो महाप्रभु तो सब सबके हृदय की बात को जानते हैं, तो महाप्रभु पर्सनली एक एक भक्त को बोल रहे थे कि जिसको जो पसंद है उसको वो जाके दे दिया जाए, इसको खाजा दो, इसको लड्डू दो, इसको पेड़ा दो, इसको बर्फी दो, या इसको रसगुल्ला लाके दे दो। मिष्टी दही होता है उड़ीसा में, जगन्नाथ को भोग लगता है मिष्टी दही? नहीं, शायद नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, जो भी जगन्नाथ का महाप्रसाद था वो अलग अलग प्रसाद के विभिन्न विभिन्न प्रकार के, हाँ जी रबड़ी, रबड़ी तो रहता ही है, छेना रबड़ी विशेष जगन्नाथ जी की प्रसिद्ध है। तो बोले कि महाप्रभु जानते थे किसको मीठा पसंद है, किसको तीखा, किसी को कन्निका पसंद है, तो किसी को खाजा पसंद है, तो किसी को जो है पोली पसंद है, तो सब अलग अलग। तो महाप्रभु बोलते थे इसको वो सर्व करो, इसको ये भगत को ये ज़्यादा पसंद है, इनको ये पसंद है, तो एक एक को जो है महाप्रभु बिल्कुल आदेश कर रहे थे जिसको जो पसंद है। जिस प्रकार से बड़ा सुंदर जो है बड़ा हो रहा था, किस प्रकार से जो है, तो वहां सर्वभौम भट्टाचार्य भी महाप्रभु के बाजू में बैठे थे, उनको भी महाप्रभु बोल रहे थे ये खिलाओ, इस प्रकार से ये खिलाओ, तो बहुत प्रसाद खिला रहे थे। तो गोपीनाथ आचार्य उनके वो थे ना, साले थे ना, ब्रदर इन लॉ, हिंदी में क्या बोलते हैं साले, साले गाली वाले साले नहीं, हिंदी में साले ही बोलते हैं ना, ब्रदर इन लॉ गोपीनाथ आचार्य, तो वो भी थे, तो वो भी उनको खिला रहे थे बार बार, तो वो भी देख रहे थे, अरे वाह पहले तो आप बड़े बिल्कुल विद्वान पंडित और बिल्कुल वो ग्रेव ग्रेव अर्थात बिल्कुल ही गंभीर प्रकार के व्यक्ति थे, अभी महाप्रभु के बाजू में बैठ के बिल्कुल बिंदास नहीं, बिल्कुल यार आराम से प्रसाद खा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं आनंद की और बातचीत भी कर रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल वो तो विद्वान पंडित गंभीर थे, बिल्कुल प्रसाद के वक्त देखना नहीं, केवल प्रसाद को ऑनर वैसे करना चाहिए भक्तों को, बिल्कुल सम्मान पूर्वक प्रसाद स्वीकार करना चाहिए, लेकिन गोपीनाथ आचार्य भी थोड़ा मजाक उड़ा रहे थे, अभी तो बिल्कुल मजे से खा रहे हो, तो वो भी कह रहे थे कि हाँ भाई महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई है, एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने मुंह भी नहीं धोया था, जगन्नाथ का महाप्रसाद आया तो उसको मैंने स्वीकार कर लिया था। तो वह बड़ा सुंदर कहते हैं कविराज गोस्वामी, महाप्रभु बिना के हो नहीं दया मैं, काकेर गरुड़ करे ऐछे कौन है। महाप्रभु की कृपा विशेष है, बिना के हो ना ही दयामय, महाप्रभु की कृपा बिना कौन दयामय। काकेर गरुड़ कर ले, जिसने कबूतर को, कबूतर बोलते हैं ना हिंदी में, क्रो क्रो, काकेर कौआ, हाँ कौए को गरुड़ बना दिया, ये महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु की कृपा। जो भी हम में से कई लोग भक्ति में आने से पूर्व, प्रभुपाद जी के संपर्क में आने से पूर्व कौए की तरह ही थे, नहीं पिलग्रिमेज, व्हाट इज दैट प्लेस, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ फॉर वर्शिप, जहाँ कौए लोग जहाँ कहाँ जाते हैं, कौए लोग कहाँ जाते हैं, हाँ कूड़े में, कचरे के ढेर में। तो हम लोग भी इस भौतिक जगत में प्रयास कर रहे थे भोग करने का, कचरे के ढेर में इस जगत में जाया करते थे, वहाँ पर प्रभुपाद जी की कृपा से एटलीस्ट पता तो चल गया कि ये कचरे का ढेर है, अभी भी इच्छाएं तो हैं, जाने की इच्छा करती है वो कचरे के ढेरे में खाने की, लेकिन अभी पता चल गया कि वो कचरे का ढेर है, उधर नहीं जाना है, इच्छा अभी भी है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमें ज्ञान तो हो गया कि भैया ये कचरे का ढेर है, यहाँ नहीं जाना है, धीरे 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 वो जब महाप्रभु की कृपा होगी तो फिर धीरे धीरे वो गरुड़ के लक्षण आएंगे, गरुड़ जी का सदैव भाव है भगवत सेवा करना, तो ये भाव आएगा, अभी तो हम कौए हैं, एटलीस्ट मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, सबके बारे में नहीं कहना चाहिए, बट हम कौए हैं अभी फिलहाल, वो भोग करने की इच्छा है इस भौतिक जगत में, अभी तो बहुत इच्छा है हृदय में, लेकिन धीरे 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 महाप्रभु की कृपा से उनकी सेवा करते करते, झाड़ू लगाते लगाते, झाड़ू लगाते रहना चाहिए, लगाते लगाते एक दिन जो है गरुड़ जैसी भावना हमारे हृदय में आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रसंग होता है, तब सत्य प्रसाद, प्रसाद के पश्चात सब लोग हरी हरी करके, हरी ध्वनि करके जो है बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, और महाप्रभु स्वयं फिर से सबको चंदन और माल्यार्पण करते हैं। बड़ा तो याद है हमने जब आरंभ किया था कथा को, तो झाड़ू देने से पहले महाप्रभु ने पहले माला पहनाई थी सबको और चंदन भी लगाया था, तो अंत में भी लीला के अंत में भी प्रसाद होते ही तो महाप्रभु सबको चंदन लगा रहे हैं और तुरंत माल्यार्पण करते हैं। उसके पश्चात जो भी सेवा कर रहे थे सर्वर लोग, उन लोगों ने, सब भक्तों ने प्रसाद लिया और गोविंद श्री हरिदास ठाकुर जी के लिए प्रसाद लेके गए, और तत्पश्चात नेत्रोत्सव के दर्शन के लिए अगले दिन सब लोग, अगले दिन सुबह ही होता है ना गुंडीचा के, अगले दिन नेत्रोत्सव जब भगवान का 15 दिन का जो अनवसर का समय था, उसके पश्चात सब भक्त लोग बड़े उत्साह के साथ श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। हरे कृष्ण, समय हो गया है और हम लोग शाम को श्री जगन्नाथ जी के नेत्रोत्सव के लिए जाएंगे। कितने बजे आरंभ होगा? 3 से 4 के बीच श्री जगन्नाथ जी का रथ गौशाला से आरंभ होके, हमारा रूप रघुनाथपुर को अनुरोध है कि थोड़ा वृंदावन में भी, अभी जगन्नाथ करती है ये रथ यात्रा करती है कि कुरुक्षेत्र से जगन्नाथ जी को वृंदावन लेके आना, तो हमारी प्रभु जी से अनुरोध है कि थोड़ा जमुना जी पे भी ले आए जगन्नाथ जी को, और फिर यहाँ पर निमाय नगरी और राधा नगरी मर लेकर जाएं। हरे कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री वृंदावन बिहारी देव की, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। हरे कृष्ण।